क्या कहा, क्या पढ़ाते हैं?
फिजिकल एजुकेशन।
फिजिकल एजुकेशन हमारे काम का नहीं।
क्यों, अभी तक तो उसने काफी स्टूडेंट भेजे हैं।
अच्छा, तो उन कुछ लोगों को उन्होंने भेजा था।
जी हाँ।
ठीक है, तशरीफ लाए।
ये जगह डरावनी नहीं है?
माफ कीजिएगा, दफ्तर के हालत कुछ ठीक नहीं थे तो मैंने सोचा बेहतर होगा यहीं पर मुलाकात कर लें। वैसे ये बुरी जगह भी नहीं है, इसको ठीक करना चाहती हूँ, हमारे अगले प्रोग्राम के लिए मुनासिब है। जब हम मिलकर थोड़ा और काम करेंगे तो एक दूसरे को ज्यादा पहचानेंगे और पैसा भी कमाएंगे।
बेहतर नहीं होगा कि हम अपने काम को जारी रखने के बारे में बात करें?
जी हाँ, मैं चाहती हूँ पहले ही दिन सारी बातें वाज़ह और साफ हो जाएं। देखिए, ना मैं किसी को धोखा देती हूँ और ना धोखा देने वाले को छोड़ती हूँ।
देखिए मैडम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। मैं ये सिर्फ तारुफ की हद तक आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं स्टूडेंट को पकड़ कर यहाँ नहीं ला सकता कि आपके साथ एग्रीमेंट करें और फिर आप उसे बाहर भेजें।
नहीं, जरूरी नहीं आप इस काम का अंजाम दें। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक अच्छे स्टूडेंट भेजें।
अच्छे स्टूडेंट?
बड़े दाने वाले।
बड़े दाने वाले? लेकिन ये पहली मरतबा है कि ऐसे काम के लिए ये लफ्ज यानी बड़ा दाना सुना है। लेकिन बुरा नहीं है, हमारी मालूमात में इजाफा हुआ।
मैं अपने बारे में मजीद बताना चाहती हूँ, पैसे देने के मामले में देर नहीं करती।
मुझे भी ऐसे लोग बहुत पसंद हैं।
ये इब्तदाई अमाउंट है।
शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़। फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैंडसम हैं।
इसका काम अच्छा है, इसको हाथ से जाने नहीं देना।
हाँ, हाथ से नहीं जाने देंगे फिलहाल।
क्या मतलब कि फिलहाल?
तुम इन बातों को नहीं समझ सकती। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई भी इस पर शक नहीं करेगा, लेकिन एक कमी है कि अगर किसी खास सब्जेक्ट का माहिर टीचर होता तो नंबर ना देकर अच्छे तरीके से हमारे लिए काम कर सकता था। लेकिन हमें सोचना होगा।
सोचना होगा कि क्या मतलब है सर, अपना काम तो कर ही रहे हैं।
ये तुम्हारा सर सर कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो उठो, गाड़ी स्टार्ट करो, चलें। हेलो तालिबी, क्या मैंने कहा नहीं था कि बाग वाली इमारत को साफ करो? अगर तुम खुद नहीं कर पा रहे तो उनसे कहो किसी और को भेजें। काम छोड़।
रुकिए डॉक्टर साहब, आपसे काम है।
अभी मेरा क्लास है, क्लास के बाद तुमसे बात करूंगा।
जाने से पहले मेरे जहन में एक बात आई थी, सोचा आपसे कहता चलूं, कल रात की बातों के सिलसिले में।
कौन सी बात?
सुलेमानी को हटा दिया जाए।
तो
मैं तो कहता हूं कि बास्केटबॉल टीम से शुरू करें।
ठीक है, रुके रहो, क्लास के बाद इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं।
अगर क्लास हो तब ना।
अस्सलामु अलैकुम सर।
तशरीफ रखे। उन्हें बता दें कि डिसिप्लिन कमेटी का फैसला सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑर्डर से ही मनसूख किया जा सकता है। पढ़ाई से भागने के बजाय क्लास में आए, क्योंकि इस साल के आखिर में मुझे यूं ही नंबर देना नहीं आता। कानून के मुताबिक अगर 4 दिन बगैर उज़्र के गैर हाजिरी लग गई, और यकीनन इस गैर हाजिरी का उज़्र किसी भी शक्ल में काबिल कबूल नहीं है, तो फिर नंबर 0 मिलेगा। कानून की पाबंदी तुम लोगों को सिखा कर रहूंगा मैं।
सर पढ़ाएंगे नहीं?
ये रही पढ़ाई, बेहतर होता तुम शोबे अदबियात में जाते, बिला वजह साइंस पढ़ने आ गए।
आपसे गुजारिश है सर। माफ कीजिएगा सर, क्या आप मेरे प्रोजेक्ट से बाखबर हैं?
कौन सा प्रोजेक्ट?
पैदावार से मसरफ तक बिजली के वोल्टेज को गिरने से रोकने की मशीन।
ठीक,
डिसिप्लिन कमेटी की जलसे में इसके बारे में बात हुई थी। आपने खुद ही कहा था कि बजट देर से ना मिलने के बारे में बात होगी।
वही प्रोजेक्ट जिसकी वजह से हंगामा हुआ है।
इसका प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है सर?
ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो?
तलबा के अंदर से जज्बा ही खत्म हो गया है, मेरे असिस्टेंट का भी खारजा हो गया है।
उसने बकवास की, हंगामा किया, इसलिए निकाल दिया गया। लेकिन अब भी तुम्हारे पास लड़कों की कमी है क्या? तुम खुद तो अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारे आसपास वालों के बारे में क्या कहूं।
डॉक्टर जबरी, आप मेरी बात नहीं समझे। मुझे अपनी तहकीक काम को जारी रखने के लिए आपकी मदद की जरूरत है।
देखो, अब से कोई भी काम हो तो डॉक्टर खुदाई से कहना, वाइस चांसलर तो हर काम में दखल नहीं हो सकता। मुआविन को तो इसीलिए रखा गया है।
देख रहे हो उनका मूड सही नहीं है, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? डॉक्टर खुदाई से बात करो।
डॉक्टर खुदाई ने तो कहा था कि प्रिंसिपल की राय जरूरी है।
क्या आप जानते हैं कि ईरान की यूनिवर्सिटियों का दर्जा हालिया कुछ बरसों में कितना नीचे आ गया है? मेरे ख्याल में तुम्हारा तेहरान यूनिवर्सिटी का दर्जा सबसे ज्यादा तकरीबन 899 या यूं कहूं कि 900 तक है। मैं नहीं जानती कितने ज्यादा अखराजात के बावजूद सभी मुल्की यूनिवर्सिटियों में क्यों पढ़ना चाहते हैं। इस वक्त यूरोप की इक्तिसादी हालात अच्छे नहीं है। तुम थोड़ा सा खर्चा करो तो मैं खुद तुमको अच्छी जगह भेज दूंगी जहाँ तमाम सहूलियात के साथ पढ़ सको।
लेकिन ये बताइए, जहाँ भेज रही हैं वो मंजूर शुदा भी है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो हमारा पैसा बर्बाद हो जाए।
नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। जनाब, आपका नाम शाहीन था ना? ठीक है, हम सरकारी नुमाइंदा हैं, अथॉरिटी रखते हैं, यहाँ से बेहतर जगह और कहाँ होगी। ये लो। शुक्रिया। ये मोहतरमा नीना कानीना है, यहाँ की मैनेजर।
खुशी हुई आपसे मिलकर।
मुझे भी खुशी हुई। ये रूसी हैं क्या?
रूसी हैं, लेकिन फ्रांस में रहती हैं। इनकी वालदा ईरानी थी, 7 साल तक ईरान में पली बढ़ी हैं। आप परेशान ना हो, हमारा काम बिल्कुल सही है। अच्छा, अब तुम्हारी बारी है। अच्छे बच्चे, तुम्हारे बाप का क्या नाम है?
नहीं मालूम।
नहीं जानते?
मैं जब 2 साल का था मेरे वालिद ईरान से चले गए थे, तब से मैंने नहीं देखा, सिर्फ फोन पे बातें होती हैं।
तअज्जुब है, ये रुस्तम सौराब के बगैर कहाँ चले गए?
अमेरिका, अरिजोना।
ओह, इतनी दूर। तो फिर इस बेटी ने अपने बाप को नहीं देखा है, आखिर क्यों?
लंबी कहानी है।
मेरी सुनो तो, अमेरिका जाने के बारे में सोचो।
नहीं हो सकता, फौजी ट्रेनिंग लाजमी जो है, बाहर नहीं जा सकता।
ट्रेनिंग की मुश्किल तो काबिल हल है, वो चीज़ जो काबिल हल नहीं है वो है पैसा। मेरे ख्याल में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगी, बस थोड़ा जेब को हल्का करना होगा। और अपने मसाइल अगर हमें नहीं बता सकते तो हमारे वकील को तो बताना ही होगा, क्योंकि जिन चीज़ों को तुम बेफायदा समझो हम उन्हीं के जरिए तुम्हारे लिए वीज़ा ले लें। बस तुम्हारा खर्चा बढ़ सकता है, पहले बता दूँ।
फिर भी कितना?
मेरे ख्याल में वकील और कफील और तीसरी चीज़ों को मिलाकर 70 या 80 या इससे भी ज़्यादा, मैं नहीं जानती, नीना मैडम से पूछना होगा।
बहुत ज़्यादा है।
तुम्हारा काम भी बहुत सख्त है अमेरिका, वो भी बगैर पासपोर्ट के।
क्या गैर कानूनी तरीके से?
नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहा, हमारा सारा काम कानूनी है, तुमको पासपोर्ट देंगे, कानूनी तरीके से भेजेंगे।
नादरी साहब तो बता रहे थे कुछ रियायत मिलेगी।
अगर नादरी साहब ने कहा है तो जरूर मिलेगी। थोड़ा रुको, मैं मैडम से मशवरा करके तुम्हारे पास आती हूँ।
हमिद, क्या हो गया?
ये जो चांसलर साहब है ना, उन्होंने मुझे तुम्हें 2 घंटे तक पीछे कॉरिडोर में दौड़ाया, उसके बाद कह रहे हैं कि सब जवाबित के मुताबिक करो, मुआविन से जाके मिलो।
खुद ही तो कह रहे हो हेड नुमा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कॉरिडोर, वॉशरूम के पास और सीढ़ियों के पास की हेडियत कब खत्म होगी। क्या ये लोग सोचते नहीं कि कितनी बुरी बात?
अगर ये लोग इतना ही सोचते तो हमारी ये हालत क्यों होती?
ये लोग बिल्कुल मुनसिफ नहीं है।
वाकई डॉक्टर शरीफी की याद आती है।
जब उनसे हम कुछ मांगते थे तो वो इतनी माजरत करते थे कि तुम शर्मिंदा हो जाओ।
ठीक है मैडम, ठीक है मेरी बेटी,
ठीक है मेरी नूर चश्म।
नहीं भाई,
बहुत ही मेहरबान थे, मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानते थे। खैर अफसोस तो है, बहरहाल अब भी आफियत की कदर करो।
कुछ कहो उनसे और उनकी भवें तन जाती हैं। हमारी हालत इस वक्त बहुत खराब है, कम से कम तुम तो परेशान ना करो। आज सुबह मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारा खारजा हो चुका है, समझी? खारजा। गनीमत थी कि सिक्योरिटी का चीफ वहां था, उसने कहा कि अभी तक मिनिस्ट्री से इनका लेटर नहीं आया, आप अंदर जा सकते हैं, जाइए।
हमसे गलती हुई थी, उन लड़कों को जो नए साल के हैं और अभी उनका दिमाग गर्म है, चांसलर साहब के दफ्तर के सामने जाने देते फिर सही हो जाता, लेकिन तुमने नहीं जाने दिया।
हाँ नहीं करने दिया, हम जो इतने थे हमें तो बाहर निकाला जा रहा है, वो भी आखिरी सेमेस्टर वाले, मेरे ख्याल में इन नए लड़कों को तो अच्छी तरह पीट डालते।
शाइन भी तो हमेशा की तरह मुंह बनाया होगा, है ना?
कल से उसे नहीं देखा है और आज भी नहीं आया है।
क्यों आएगा वो?
अरे आप बस भी करो, तुम लोग दो हफ्ते बाद वापस आए, एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के बजाय मायूसी की बातें कर रहे हो।
कैसे लो हौसला अफजाई हो सकती है जबकि सब हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हैं। हमें चाहिए अपने नजरियात का बिजली घर में तजर्बा करें, ना कि किसी जगह की तलाश में नहीं या डॉक्टर खुदा के पीछे दौड़े। खुदा की कसम मैं अपनी पूरी जिंदगी में निगार के पीछे भी इतना नहीं दौड़ा।
क्या अब तुम मेरा उनसे मुवाजना करोगे?
मैंने मिसाल दी है।
अगर मुझे पता होता कि तुम इतना मेरे पीछे पड़ोगे तो मैं तुम्हारी बीवी ना बनती। मर्द को मर्द होना चाहिए।
ठीक कहती हो।
देखिए डॉक्टर साहब, हमें अपने तरीके से शिकस्त देना चाहिए। एक सब्जेक्ट की क्या हैसियत है? क्या मैं लिटरेचर के उस्ताद के जैसा नहीं हूँ कि अलग से एक घंटा पढ़ा सकूँ? अरे भाई सिर्फ अलग है, पढ़ाने की बात नहीं है। वो सुबह से शाम तक लड़कों के साथ रहता है, वरना हफ्ते में दो घंटे पढ़ाने से कोई जादू नहीं कर सकता। कर सकता है?
बकवास है, हमारे स्टूडेंट्स बेवकूफ़ हो गए हैं। हम और तुम प्रोफेशनल क्लास लेते हैं और वो उस क्लास को छोड़कर सुलेमानी की क्लास में जाते हैं और अशआर सुनते हैं।
ये बताइए, नाम से ही इश्क के बहलाओ मन का क्या मतलब? कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं है? इसी दरमियान वो इंसान अपनी बातें कहता है, यही हमारे लिए अच्छा बहाना है। वाकई में यह बच्चों के दिमाग को धो रहा है, मुझे शक है। हम पहले ही बता दें।
छोड़ो भाई, तुम भी बेकार की बातें कर रहे हो। जब ना हासिल हो सके कामो दहन, नाम से ही इश्क के बहलाओ मन, ये अशआर मुझे अच्छी तरह से याद है। ये आशिकाना शेर है, इसमें सियासत कहाँ है? तुमने नहीं पढ़ा?
अब जो भी हो, उसे चाहिए कि यहाँ आए और पढ़ाकर अपने घर की राह पकड़े। जहाँ देखो वहाँ दखल अंदाजी करता है, एक दिन वो आपका पत्ता साफ कर देगा।
हाँ, बुरी तरह से कांटे की तरह मेरी आंखों में चुभ रहा है। स्टूडेंट का झगड़ा भी ठंडा पड़ चुका है, फिर भी क्लासों में शिरकत नहीं कर रहे हैं। आखिरी सेमेस्टर में सभी को जीरो नहीं दे सकते, सिर्फ मेरी और तुम्हारी क्लास ही ऐसी है। नहीं, ये स्टूडेंट्स का काम नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स को तो हम जानते हैं, पुरजोश हैं, नौजवान हैं, लेकिन गुस्से वाले भी हैं।
डॉक्टर साहब, एक साथ सभी को नहीं निकाल सकते, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करते हैं। इसीलिए कहता हूँ मैं कि बास्केटबॉल की टीम उससे ले लेते हैं, तो फिर वो खुद ही मजबूर होकर निकाले जाने का मौका हमारे हाथ में दे देगा और फिर सारे स्टूडेंट क्लास में वापस आ जाएंगे। आपकी क्या राय है डॉक्टर?
ये भी आजमा लेते हैं।
उठो उठो, अपना सामान इकट्ठा करो, प्रैक्टिस में जाना है। ऑब्जेक्शन की इबारतों को भी पूरा कर रहा हूँ, सुलेमानी की मदद लेना है, डिसिप्लिन कमेटी के दस्तावेजात को भी मुझे ले जाना है।
मेरी समझ में नहीं आती ये फरामर्जी साहिबा किस तरफ है, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है, मुसलसल है तो लाल कर रही हैं।
मैं उससे बात कर लूँ क्या? मेरे साथ तो ठीक है।
मैं स्टूडेंट्स का नुमाइंदा हूँ तो मेरे साथ ऐसा करती है, तुम्हारी तो फिर क्या बात है।
ठीक है, देख लेंगे,
हो सके तो जाके ले लो।
फरीद साहब, आपका काम कब खत्म होगा?
पूरा हो जाएगा, तुम मुझसे पूछताछ क्यों कर रही हो? चलो।
चलो।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
तुम लोग जाओ और वर्जिश करो, ठीक है।
सलाम अलैकुम नादरी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आप? हमारे स्टूडेंट्स नहीं आए?
नहीं अभी नहीं।
ठीक है, हो सकता है उनकी क्लास थोड़ी तुलानी हो गई हो।
नहीं, अफसोस की बात यह है कि दूसरी मुश्किल पेश आ गई है।
क्या हुआ?
सर माफ कीजिएगा, मैं मजबूर हूँ। ऊपर से हुक्म हुआ है कि वर्जिश के टीचर के अलावा किसी को फील्ड में नहीं होना चाहिए।
किसने ऐसा हुक्म दिया है?
प्रिंसिपल ने।
प्रिंसिपल नहीं, आरजी सरपरस्त ने। यानी उन्होंने अपनी तलवार पर नियाम लगा ली।
मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझसे कहा गया कि रिपोर्ट करूँ।
बहुत अच्छा, तुम लोग वर्जिश करो, मैं देखता हूँ। ऐसा तो नहीं कि देखना भी मना है?
माफी चाहता हूँ। जी हाँ, 3-4 हफ्ते पहले के वाकये के सबब कहा गया है कि लोग इकट्ठे ना हों।
अच्छा, ठीक है। उसे लगता है कि यूनिवर्सिटी उसकी मिरास है।
सलाम अलैकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम।
सलाम अलैकुम नादरी साहब।
अलैकुम अस्सलाम, कैसे हो? कोई खबर
है तो आपके पास है, यानी जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा नादरी साहब।
क्यों भाई, आखिर किस लिए?
जानते हैं, मेरे जहन में भी ये बात नहीं थी कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। बस एक बार यहाँ से निकल जाऊंगा तो मजा आ जाएगा साहब।
अरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। एक शख्स को जानता था तो उसका तारुफ करा दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ऐसा बड़ा काम नहीं किया। देखो, तलबा के साथ मेरे ज्यादा ताल्लुकात नहीं है। अगर चाहो तो उनसे भी कह सकते हो, तुम्हारे लिए भी बेहतर है और सबके लिए बेहतर है। तुमको पता चल गया है, उन्होंने सब बता दिया?
जी नादरी साहब, नाजनीन साहिबा और नीना साहिबा दोनों से तफसीली बात हो चुकी है।
खुदा का शुक्र है। कोई रास्ता हो ताकि लड़के कामयाब हो जाएं और उनका मुस्तकबिल भी रोशन हो तो हम भी खुश होंगे। हम तो जरिया हैं, खासतौर से तुम लोगों की रूह और जिस्म को पुरनिशात बनाने का जिम्मेदार हूँ। और जिस्मानी वर्जिश के कोच इसीलिए पैसे लेते हैं। देखो, तवज्जो से काम लेना। अलबत्ता ये धोखेबाज नहीं है, उनका काम ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे ताकि हम पर भी ज्यादा एहसान ना हो।
नहीं नादरी साहब, इनका काम परफेक्ट है, 100 साइट से ज्यादा हमें दिखा चुके हैं। बहुत शुक्रिया नादरी साहब।
खड़े क्यों हो गए भाई?
ये शाहीन यहाँ क्या कर रहा है? अभी दोबारा झगड़ा होगा, हमारी बेइज्जती होगी।
बच्चा बन गए हो? डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ।
डर किस बात का, मैं नहीं चाहता दोबारा भीड़ इकट्ठा।
ठीक है, माफी मांग लो।
अगर उसने उल्टी सीधी बात की तो मैं मार के ठीक कर दूंगा। सिर्फ तुम्हारी दोस्ती का ख्याल रखता हूँ, जो सब्र कर रहा हूँ।
अच्छा काम कर रहे हो, मैं आगे जा रहा हूँ। अगर सब मामला ठीक रहा तो मैं बता दूंगा। ठीक है,
ठीक,
ख्याल रख। जा
कैसे हो?
अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली।
अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम अस्सलाम, कैसे हो?
बस ठीक ठाक।
तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ ताकि अपना काम कर सकूँ। खुदा
हमीद आया हुआ है, शर्मिंदा है, इस मसले को खत्म करो।
अरे मेरा क्या है, वो भी मेरे दोस्तों ही में से है। वो खुद आके मुझसे उलझा, तुमने तो देखा है मैंने कुछ किया। इस बच्चे को मारने से भी क्या फायदा?
तुम्हारी खैरियत के लिए फोन किया मैंने। एक मिनट, अभी तुमको फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
हमीद भाई,
चलो
ठीक है शाहीन साहब। अरे
चलो गले लो।
माफ करना, मैं गुस्से में था।
कोई बात।
डॉक्टर सुलेमानी, डॉक्टर सुलेमानी, रुकिए ना, रुकिए। आपसे कह रहे हैं ना रुकने को, प्लीज जरा सा रुक जाइए। मैंने कहा ना डॉक्टर, मैंने इनसे कहा मत जाइए।
कोई बात नहीं, आप तशरीफ ले जाएं। महसूस साहब, आप इधर कहाँ?
आप लोग जहनी मरीज हैं।
अब तक नहीं हुआ कि तुम यहाँ पर आओ और कोई मुश्किल ना हो।
क्या तुम नहीं जानते?
नहीं, बता तो ताकि हमको भी पता चल जाए।
ये खेल के मैदान में न जाने का हुक्म क्या है?
तो इसमें परेशानी क्या है? सुना है कभी कभी लड़कियां भी वहां आती हैं। तुम तो जानते ही हो कि ये बाद में फसाद की जड़
है। फसाद की असल जड़ यहाँ है। ये जाबरी के अल्फाज नहीं है, तुम्हारा काम अमराज जैसा है।
ठीक है, मैं उम्र आस हूँ तो जरूर डॉक्टर जाबरी मुआविया होंगे। और हुजूर वाला ने नाउज़ बिल्लाह हजरत अली के जहाँ बैठने की बात कबूल कर ली, बड़ी अच्छी बात है।
कोई भी मौला की जगह नहीं आ सकता, लेकिन मेरा दिल बहुत चाहता है कि उनके सहाबियों की जगह हो जाऊँ। अहम बात यह है कि तुम लकीर के इस तरफ नहीं हो।
डॉक्टर साहब ऐसा ना कहें, हम आपको चाहते हैं, तोहमत लगा रहे हैं। इसके बाद पुलिस सरात पर आपका गरिमा पकड़ेंगे।
ये तो पुलिस सरात पर ही देखा जाएगा।
खुदा की कसम, तुम्हारा झगड़ा भी समझ में नहीं आता।
अच्छी तरह पता है डॉक्टर, 24 घंटे के अंदर इस अहमकाना हुक्म को बातिल करोगे या मैं खुद कर दूंगा।
धमकी मत दो मसूद, क्यों जिद कर रहे हो? ये प्रिंसिपल साहब का हुक्म है, सिर्फ हंगामा मचाए हुए हो और तुमको खुद भी नहीं पता कि किस लिए कर रहे हो।
मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो।
तुम्हारी जान की कसम, खुदा की कसम, इस फैसले का इस मामले से कोई रब नहीं है।
खुदा की कसम खाते हो मेरी आंखों में आंखें डालकर सफेद झूठ बोल रहे हो। खुदा करे कि रियाकारी खत्म हो जाए, कि सारी आफतें इसी की वजह से हैं।
डॉक्टर साहब माफ कीजिए, मैंने उनसे कहा था अंदर नहीं जा सकते।
कोई बात नहीं,
आज बहुत अच्छा खेले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ ना लगाओ, ये क्या है? तुम मेरे साथ नहीं आओगे?
नहीं, मुझे फरीद से काम है।
चलो तुम भी तो जा रहे हो, खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चैंपियन का?
वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ।
अलबत्ता तुम्हारे बदन से जो बदबू आ रही है, मैं भी ठीक नहीं हूँ।
बदबू आ रही है?
कोई परफ्यूम वगैरह लगा लो, लोगों पर रहम करो।
छोड़ो भी भाई,
अब किस बात का रोना है?
नहीं मालूम, सुलेमानी वर्जिश पे नहीं आते। नादरी भी आए तो उल्टा सीधा कुछ कहा और चले गए। कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग उसके खिलाफ कुछ कर बैठे।
डरने की कोई बात नहीं, डॉक्टर सुलेमानी सबको देख लेंगे। देखो तुम इस शख्स को इस नज़र से देखो कि बास्केटबॉल की नेशनल टीम के रुकन थे, इंजीनियरिंग की, सियासत में भी एमए किया है और फारसी अदब में भी पीएचडी की है। अच्छा तो अब ये आदमी या तो बहुत चालाक होगा और या तो बहुत ही बेवकूफ़ होगा, और अगर देखा जाए तो सुलेमानी साहब बहुत चालाक हैं।
जानता हूँ, लेकिन उनका मिजाज इन लोगों से मेल नहीं खाता।
लेकिन इन लोगों को पीछे छोड़ देंगे
शायद। तुम नहीं चलना चाह रही हो?
क्यों नहीं, लेकिन जरा तुम इस शीशे को नीचे कर दो, बदबू से मेरा दम घुट रहा है।
तुम्हें यकीन नहीं होगा फरीद, करीब से देखो तो समझोगे मैं क्या कह रहा हूं।
मैं क्या कहूं, मेरे ख्याल में शाहीन तुम कुछ ज्यादा फंस गए हो।
किसके चक्कर में फंस गया हूं?
अरे भाई मैं कह रहा हूँ, स्काइप के जरिए हॉलैंड के एक लड़के से मैंने बात की है। मैंने खुद देखा है ऑनलाइन, दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बात कर रहे थे। वो खुद लड़की दो नस्ली है। लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे बात करना बेकार है।
ऐसा ही लग भी रहा है
फरीद, कम से कम अपनी जिंदगी में एक बार सही फैसला कर लो। सोच लो अपनी पूरी जिंदगी जाबरी और खुदाई के हाथ में देना सही है, या इस किस्म के और दूसरे जैसे सुलेमानी जो अपने आप को हमारा बाबा समझता है और ये भी समझ में नहीं आता कि वो किसके साथ है। अरे बहुत हो गया भाई, अकल भी कोई चीज है? वीसी खुद दावत दे रहा था, किस यूनिवर्सिटी का? पेरिस यूनिवर्सिटी, पता है कहाँ है? कसम से नहीं पता होगा। वहां की तस्वीरें देखी तो मेरी आंखें खुली रह गई। खुद यूनिवर्सिटी, उसकी सहूलतें, लैब, क्लास फेलो। भाई हम यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
अच्छा ठीक है, बस करो, कोई बात नहीं, उनसे भी मिल लेंगे, फिलहाल हम भी तुम्हारी तरफ पड़े हैं।
मैं भी कोई इसरार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में बुरा लग रहा था कि तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे साथ जो हालात हैं, तुम्हारा काम और भी आसानी से हो जाएगा।
कल मिलेंगे।
हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, आप शाहीन फरशीदी हैं?
जी मैं खुद ही हूँ।
मैं मनु चेरी हूँ, मैं ही लैला असलानी साहिबा के कत्ल का केस देख रहा हूँ, आपसे बात करना चाहता था।
जी ज़रूर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
उम्मीद है कि आपको जहमत नहीं होगी। हकीकत यह है कि मैंने आपके तमाम साथियों से बात की, लेकिन इधर कुछ दिनों से आपको यूनिवर्सिटी में नहीं देख रहा हूँ। अगर वक्त हो तो किसी दिन एक दूसरे से बात करते हैं, या यूनिवर्सिटी में या किसी ऐसी जगह जहाँ बेहतर समझे।
जी ज़रूर, लेकिन मैं कल कहीं जा रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी नहीं आ पाऊँगा, तो हो सकता है बाद में हम बात करें।
ठीक है, कोई बात नहीं, अपना काम कीजिए, बाद में मिलेंगे।
लेकिन
देखिए फरशीदी साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास बिल्कुल वक्त ना हो।
ये दोस्ताना पेशकश है, वरना आपसे मिलने के लिए दूसरे रास्ते भी हैं। मैं बाद में आपसे रब्ता करता हूँ, खुदा हाफिज़।
खुद ऑफिस।
जी जी हाँ जरूर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया, खुदा हाफिज।
हमीद बेटा जरा आहिस्ता करो, बहुत जल्दी है क्या? काश सारे काम ऐसे ही तेजी से करते।
ठीक है, कौन था निगार?
मनु चेहरी साहब थे।
मनु चेहरी, क्या काम था?
मेरे ख्याल में हमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं।
पूछताछ?
हाँ, कह रहे थे कुछ सवाल आते हैं जो सबसे उन्होंने पूछे, सिर्फ हम दो रह गए हैं। फिर ये तय हुआ कि कल सुबह यूनिवर्सिटी में मिलेंगे।
और तुमने वादा भी कर लिया?
तो मैं क्या करती, वादा ना करती।
अच्छा किया निगार बेटी, कोई जुर्म तो किया नहीं है जो तुम्हें कोई डर हो। कुछ सवाल ही तो पूछेंगे तुम लोगों से, जेल तो नहीं ले जाएंगे।
ठीक है, लेकिन अगर उस रोज डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग में ना आया होता तो इस वक्त सब कुछ सही चल रहा होता।
उनकी गलती थोड़ी है, वो खबर जो छपी थी उसकी वजह से काम खराब हुआ। अब देखते हैं क्या होता है, ऐसी कोई खास बात तो नहीं हुई है ना?
ठीक है चलो, लेकिन मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो मुझसे क्या पूछना चाहते हैं?
मैं तो थी ना, मुझसे पूछेंगे तुम सिर्फ देखना।
ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी कुछ खा लेते हैं ताकि सुबह तक जिंदा बच जाए। क्यों?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ये कोई वक्त है आने का?
कोई नहारी की दुकान है कि इस वक्त हमें बुलाए?
फरीद तुम बेवकूफ हो गए हो क्या? नहारी की दुकान का क्या मतलब? हमने इनसे टाइम ले रखा है, क्या उनको अपनी तरह समझते हो?
तुम्हें तकलीफ कहीं और से और बदला हमसे ले रहे हो।
क्या मतलब तकलीफ कहीं और से है?
कुछ नहीं, यूं ही कह रहा था।
नहीं कुछ तो हुआ है।
कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं हुआ है, तुम अक्सर ऐसे ही करते हो। कल सुबह तक यहाँ पूछताछ करते रहोगे? चलो अंदर चले।
कैसी पूछताछ?
कुछ नहीं, अब इत्मीनान हो गया है तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो। हालात तो इन लोगों के ठीक ठाक नजर आते हैं। अभी आके कहेंगे 20 मिलियन चाहिए, और हम लोग भी तो बहुत अमीर है ना।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ये मेरे दोस्त हैं फरीद, जिनका तस्करा मैं पहले कर रहा
था। बड़ी खुशी हुई, खुश आमदेद। मैं आप लोगों के लिए फ्रांसीसी कॉफी बनाती हूँ, पसंद है ना?
जी हाँ।
अगर पसंद ना भी हो तो भी इसकी आदत डाल लीजिए, तशरीफ रखिए।
इन लोगों से मेरे बारे में क्या कहें?
कुछ नहीं भाई, यही कि तुम टॉपर हो और इल्मी मुकाबले में गोल्ड मेडलिस्ट।
और कुछ? मेरे वालिद के बारे में तो कुछ नहीं कहा।
नहीं भाई, मुझे बेवकूफ समझा है क्या?
तुमसे कुछ भी मुमकिन है।
फरशीदी साहब लेट आए, नीना साहिबा थोड़ा नाराज हो गई। अलबत्ता इस बार आपके मेहमान की खातिर कोई प्रॉब्लम नहीं। माफ कीजिएगा, आपका इसमें ग्रामी?
मेरा नाम फरीद तुफंगची है।
कितना अच्छा नाम है। लीजिए कॉफ़ी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। जब तक आप लोग कॉफ़ी पी रहे हैं मैं कुछ सवालात आपसे पूछती हूँ। अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं आपको फरीद बुलाऊं, क्योंकि आपका सरनेम सब।
जैसे आपकी मर्जी।
आपको बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
जी नहीं।
वाकई, कैसे?
मैं अपने घर का कफील हूँ, साथ ही साथ अगर एलीट काउंसिल का रुकन बन जाऊँ तो मुझे लोन भी देंगे और फौजी ट्रेनिंग से बच जाऊँगा। लेकिन अभी रुकन नहीं हूँ, लेकिन पासपोर्ट ले सकता हूँ।
बहुत अच्छा, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है? माफ कीजिएगा, मैंने ये सवाल पूछा है क्योंकि मैं फॉर्म भरना चाहती हूँ।
नहीं, लेकिन मेरी माँ और बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।
अच्छा, अगर आप कहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। हेलो, अच्छा मैं अभी आती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ।
ये सब क्या पूछ रही है?
तुम चाहो तो ना पूछे, आखिर उसको भी तो पता करना है कि तुम जा सकते हो या नहीं।
शायद ना जाना चाहूँ।
ऐसा कह रहे हो जैसे टिकट तैयार रखा हुआ है तुम्हारे लिए। वैसे भी बहुत झमेला है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं।
कैसा झमेला शाहीन, अभी भी हम बहुत मकरूज हैं। फालतू के पैसे नहीं है जो इन लोगों को दे सके। ऐसा ऑफिस लगता है खर्चा बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल बूढ़ी औरतों की तरह बस बड़बड़ाओ। अरे बंद करो अपना मुंह, देखो होता क्या है।
यही मेरी परेशानियों का एक हिस्सा है, आप कुछ करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर जावरी जानबूझकर टहला रहे हैं। एक दिन स्टूडेंट को और अभी जल्दी में मुझ पर बरस पड़े थे। खुद तो कानून की रियायत नहीं करते, लेकिन सबसे कहते रहते हैं कानून के मुताबिक, कानून के मुताबिक। मैं नहीं जानता क्यों मैं ही बास्केटबॉल की टीम की सरपरस्ती से हटूं, जबकि मैंने ही ये टीम बनाई है। डॉक्टर साहब, उनका ये रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है।
हम मनोचहरी साहब की राय के मुंतजिर हैं, अभी भी तफ्तीश जारी है। अलबत्ता डॉक्टर जाबरी के अंदर कुछ खामियां हैं, लेकिन मुस्बत काम भी उन्होंने किया है। वो कुछ अच्छे प्रोफेसर्स को एकेडमिक काउंसिल में लाए हैं जो इससे पहले बहुत दिलचस्पी नहीं लेते थे।
उन्होंने बहुत एहसान किया, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तरह क्लासों की छुट्टी होने से लगता है यही हजरात जिनका जिक्र अभी आपने किया है शोबे में टिक नहीं सकते हैं।
हाँ, लेकिन सिर्फ डॉक्टर जाबरी की वजह से नहीं है, हो सकता है इन्हीं की वजह से हुआ हो। लेकिन स्टूडेंट खुद ही अपने को ऐसे प्रोफेसर से महरूम कर रहे हैं। बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको इसी वक्त निकाल दिया जाए। और एकेडमिक काउंसिल के लिए खुद डॉक्टर शरीफी साहब ही ने इन्हें राय दी थी।
डॉक्टर साहब, उनकी पिछले एक साल की कारकर्दगी को देखना चाहिए।
मुझे आपके इस रवैये पर फख्र होता है डॉक्टर साहब, दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। मैं डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग से ही आपसे बहुत मुतासर हो गया था। ठीक है, मैं खुद नायब वज़ीर या वज़ीर को बता दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि अच्छा खासा टाइम लगेगा। आप यकीन जाने आपसे मुझे वालेहाना लगाव हो गया है, और इस कमेटी में आपका जिक्र खैर भी हुआ। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा इस्तफादा करना चाहिए।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मुझे इंतजामी कामों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए दरस व तदरीस और तलबा से रबता ही हर चीज़ से बेहतर है। लेकिन अगर यही है कि तदरीस ना करूं, तो ठीक है, आपकी खिदमत में हूं, जैसा आप चाहें। अगर इजाज़त दें तो मैं जाऊं, क्योंकि क्लास है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना।
क्या बात कर रहे हैं, मेरी अभी एक मीटिंग है, इंशाल्लाह जब हो जाएगी तो मज़ीद बात करेंगे।
इंशाल्लाह,
हमारे लिए फख्र की बात है।
खुदा हाफिज़।
शकी साहिबा
जी, अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जवाब तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल माजरा चाहता हूँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था।
नहीं, कोई बात नहीं करना साहब।
आपको कैसे पता चला कि मैं करनल हूँ?
ये पेशेंट गुइयां करती रहती हैं, अलबत्ता अक्सर गलत साबित होती हैं।
इत्तेफाक से इस बार बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन कहाँ से समझी और मुझे पहचान लिए, ये मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात है। शाबाश शाबाश। क्या क्लास में चलकर बात कर सकते हैं?
जी जरूर।
तो चलिए। हमारे पेशे में वक्त का गुजरना बात को पेचीदा कर देता है, क्योंकि जुर्म के असरात मिट जाते हैं और हो सकता है कि कोई गवाह न मिले। बहरहाल नॉर्मल होना ही हमारे काम की मुश्किल है, क्योंकि कोई भी हमारी मदद नहीं करता। बचती है पुलिस और शिकायत करने वाला या मकतूल के घर वाले।
हो सके तो जल्द असल बात पे आ जाएं, हमें बहुत काम करने हैं।
देखो बच्चों, मैं कोई मामूली पुलिस वाला नहीं हूँ। मैंने क्रिमिनल लॉ के शोबे में पढ़ाई की है, मेरे पास एमए की डिग्री है। तो फिर एक दूसरे से सही बातें करें।
जी हाँ, जो आपने अंदाज़ा लगाया है उससे मालूम होता है कि आप ज़हीन आदमी हैं।
वो अंदाज़ा नहीं था, और तुम उन लोगों में से हो जो अपने जज्बात को बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। इस बात का समझना मेरे कामों में से है। अच्छा तो ठीक, शुरू करते हैं। तो हमीद, ये बताओ, लैला की मौत के वक्त तुम कहाँ पर थे?
शायद कैंपस में था, बाहर आ रहा था मैं।
मैंने तुमसे मशवरा नहीं लिया है कि कह रहे हो कि शायद। शायद कहने का मतलब ये कि राय दे रहे हो, यानी मुमकिन है वहाँ रहे हो या ना रहे हो, ये दूसरे फ्लोर पर या तीसरे फ्लोर पर, या शायद अपने घर में रहे हो। मैं तुमसे एक आखिरी जवाब चाहता हूँ, दूसरे या तीसरे फ्लोर पर?
नहीं, मैं बाहर था, दूसरे और तीसरे फ्लोर पर नहीं था।
ठीक है, अगर हो सके तो मुझे कुछ देर मैडम के साथ अकेला छोड़ दो।